शरण 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 प्रभुले
ओम शरण 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 प्रभुले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
गुरु रखहिं जो कोप विधाता
गुरु रखहिं जो कोप विधाता
वचन प्रति तन जाहि
गुरु के वचन प्रति तन जाहि
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताहि
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताहि
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय।
आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। ये भजन है, उर्दू में है। जब तक कोई चमत्कार नहीं मिलता, भगवान की तरफ से कुछ उनकी महिमा की झलक नहीं मिलती, तब तक हृदय से श्रद्धा जागृत नहीं होती, लगन नहीं लगती। इसी आशय का एक भजन है। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। मैं कस के लबों से जब पीने की सदा आई, मैं खाना भी खा ली है बोतल भी तरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। मैं कस के लबों से जब पीने की सदाई, मैं खाना भी खा ली है बोतल भी तरसती है, तुम्हें खाने के अंदर ही रहने दे मुझे साकी, मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है, जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। मैं सहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई, मैं सहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई, आहिस्ता चलो लोगों दीवानों की बस्ती है। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है, दुनिया की हर निगाहें जहरीली है नागन सी, दुनिया की हर निगाहें जहरीली है नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती है। आलम है उदासी का अशरत सी बरसती है। जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। एक जेल के सिपाही थे, नाम था ठाकुर राम सिंह। वो इतने सत्संग प्रेमी रामलीला और सत्संग के, अयोध्या के पास का मामला जहीं कथा हो वहीं पहुंच जाया करें। एक बार महाराजा हजूर से शिकायत किया लोगों ने कि किसी दिन आप जेल को खाली पाएंगे, वहां पहरा कोई नहीं देता। बोले रे राम सिंह पक्का पहरेदार है। बोले वो रात भर सत्संग सुनता है, जेल खाली पड़ी है। तब फिर वो गए जांच करने तो राम सिंह ड्यूटी में खड़े थे। तुरंत प्रणाम किया, रजिस्टर दिया, आए उनका भी दस्तखत लिया, अपने भी किया। तब वो जो बीच वाले लोग थे शिकायतिया, उन्होंने कहा अरे हजूर हम अभी वहां देख के आए हैं, वहां बैठा है। तो वहां जाके देखा तो बढ़िया खंबे से उड़क के सत्संग सुन रहे थे, प्रेम से हाथ जोड़ के। फिर राजा भाग के वापस आके देखा, दिया पहरे में खड़ा घूम रहा है। फिर जाके देखा तो वहां बैठा। बड़े सुबह बुलाया, बोले भाई राम सिंह। अब राम सिंह परेशान, सुबह लोगों ने बताया हजूर आए थे, बड़े बड़े अफसर आए थे तुम्हारी जांच करने। तो राम सिंह परेशान, बोले मैं तो था सत्संग में, इधर अब जो बीता होगा, अब जो लागत है राम जी की सेवा करनी पड़ेगी क्या, नौकरी तो गई। इतने में बुलाया उनको, बोले राम सिंह हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम केवल सत्संग सुनो, रामलीला देखो, तनखा ले लिया करो। बोले कैसा हजूर? बोले अरे भाई तुम वहां हाजिर थे। बोले मैं हाजिर नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वहां पर सत्संग सुन रहा था, ये सच है। तो बोले ये देखो तुम्हारे दस्तखत रजिस्टर में। तब राम सिंह समझ गए प्रभु ने मेरे लिए इतनी कृपा की, तुरंत अस्तीफा लिख के दे दिया, आज से मैं केवल प्रभु की ड्यूटी करूंगा बस। वो इतने बढ़िया तल्लीन लगनशील महापुरुष हुए, अंत में उनका नाम पड़ा मनीराम दास। अयोध्या में मनीराम जी की छावनी बनी हुई है, उनके गृह निष्क्रमण का यही एक माध्यम बना। तो भगवान चाहे तो कोई रूप से बात कर सकते हैं, पेड़ से बोल सकते हैं, किंतु जिस दिन से भगवान ने ये थोड़ा सा राम सिंह की ड्यूटी दिया, राम सिंह की लगन लग गई। जिन प्रभु ने इन सब को दर्शन दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। पूज्य गुरु महाराज, साधु होने का मन नहीं था, मन में कल्पना भी नहीं थी कि हम कभी साधु होंगे। बस एक ही इच्छा थी कि कब गामा से हाथ मिला लें, आने वाला दो महीने में। उसके लिए तेल पानी भोजन बस यही दंड बैठक था, और कुछ था ही नहीं। पढ़े लिखे जस धेनु के नंदन, धेनु का नंदन जानते हैं वकील साहब कौन? बड़धा। पढ़े लिखे अंगूठा छाप, बस दंड बैठक कसरत। उधर से इतने में दो तीन विचित्र घटना घट गई। इस संत को भोजन कराओ, आकाशवाणी हुई। महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे, पुणे आकाशवाणी हुई। तिबारे आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। घने अंधेरे धूप में ढूंढा, परिक्रमा किया। खंडहर मंदिर की, जहां दिया बत्ती कभी होते ही नहीं थे, बाहर आके बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। पता नहीं हमारे पीछे पड़ा कौन है, कौन जोर से बोलता है, कौन आस्ते बोलता है। आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज है, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। प्रकाश की व्यवस्था किया, तीन दिन तीन रात सेवा में लगे ही रह गए। इसी अल्प अवधि में साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए। गांव से केवल एक फरलांग की दूर एक झाड़ी में बैठ गए। गांव भर परेशान की हो क्या गया, आसमान में उड़ गए कि जमीन खा गई। छह दिन बाद वहां बैठे दिखाई पड़े किसी को, सब जुटे कि इनको हो क्या गया, घरे चलो बैठे क्यों हो, कोई उत्तर नहीं। तब किसी ने कहा, भैया उस लंगड़े के साथ हम लोगों ने देखा था, उठ लंगड़ा उसका एक पांव तो टूटा, दूसरा भी तोड़ दो। अब लाठी लेके 15-20 जवान ढूंढने लगे सत्संगी महाराज को गोड़ तोड़ने के लिए, कि लड़के की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, बड़ा जादूगर है। एक महीना ढूंढा लोग बड़ी लगन से और इधर मनाते रहे, महाराज बोले ही नहीं, चुप। फिर ठंडे पड़ गए, लाठियां रख गए। तब सत्संगी महाराज गांव में दिखाई पड़े, तब सब दौड़ के फिर इकट्ठे हुए, बोले अरे लंगड़ू बाबा आपने लड़के की बुद्धि बिगाड़ दिया। बोले हम ठेका लिए बुद्धि बिगाड़े का, करे गांव में फलनुआ पागल है। हाँ हम ठेका लिए बुद्धि बिगाड़े का, अपने कर्मों को दोष नहीं देते, अब करें क्या। वो तो महापुरुष थे ही, लोगों की निगाह में लगे कि लंगड़ा है, पागल है, विक्षिप्त है। महाराज भजन में लगे ही रह गए। बड़ी परीक्षाएं हुई, बहुत मनौनी लगी, कोई लाभ नहीं। आस्ते आस्ते जो महाराज के वो थे सागरीद अखाड़े के बड़े पहलवान थे, 25-50 सागरीद होते हैं पहलवानों के, उन्होंने वहीं अखाड़ा खोद लिया और दंड बैठक लगावे, रात में दूर में सो जाए, सुबह बोले संत जी कीर्तन किया जाए। महाराज के हो हमों के अच्छा लगा, झांझ मजीरा बजा के लोग चला करें, मैं हूं चला करूं, नगर फेरी गांव का परिक्रमा। शुरुआत में तो 15-16 आदमी थे, लेकिन परिक्रमा में जहां जो आगे बढ़े त्यों घरों से निकल निकल के लोग शरीक हो चले जाए। अंत में 4 महीना ये परिक्रमा चली तो 60-70 आदमी हो जाए रोज परिक्रमा में। आश्रम तक आवे, आश्रम में बस दूर से प्रणाम करें और फिर निकल जाए। और महाराज का नियम था कि 2 बजे उठ के बैठ जाए भजन में, तो सब कह दें संत जी आप राइट टाइम हमें 4 बजे जगा दिया करें, 4 बजे में वो परिक्रमा उठा करे, सीताराम सीताराम उठा दिया करें महाराज। एक दिन भजन में बैठे थे तो बैठे ही रह गए, न जाने कब सवेरा हो गया। महाराज के हमें बड़ी चिंता हुई, आज नियम खंडित हो गया, बड़ी चिंता हुई। इतने में भड़भड़ा के सब उठे, बोले अरे संत जी आपने जगाया नहीं। बोले तो महाराज कुछ बोले ही नहीं, क्यों नहीं जगाया, क्या बात है, कुछ नहीं। क्योंकि चिंता तो महाराज को भी थी कि आज कीर्तन खंडित हुआ। इतने में गांव से लोग आने लगे, बोले संत जी किस रास्ते से निकल गए हो, और कोई रास्ता है भी तो नहीं। बड़ी बढ़िया मधुर धुन सुनाई दे रही थी कीर्तन की एकदम करीब, हम उठ के खटिया से तैयार हुए कि बस आवे तो शरीक हो जाए, किस रास्ते से निकल गए आप। तो महाराज कहें कि हम सोचें कि हम तो गए ही नहीं थे। ये व्यंग में कुछ कह रहे हैं। इतने में 2-4-6-10-15 आदमी जुट गए, बोले हमने भी सुना, हम भी तैयार थे। तब महाराज समझ गए, अरे भगवान ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, मंडली बन के कीर्तन भी करा सकते हैं। बोले भाई आज से कीर्तन नहीं होगा, ये भगवान इतने महान है तो मैं अब उनका केवल चिंतन करूंगा, हृदय का कीर्तन बस। महाराज विक्षिप्त और उन्मत्त की तरह रहने लगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, स्क्रू लूज, कोई कोई कहे टीबी हो गया है, घड़ी टल रही है, जब ने मर जाए। किंतु एक बार ये आवाज महाराज के कान में पड़ी तो महाराज ने भगवान से पूछा, प्रभु ये लोग ठीक कह रहे हैं कि टीबी हो गई, ये मर जाएंगे। तब भगवान ने कहा तुम निश्चिंत रहो, तुम लगे भरो, इन्हें जो कुछ कहते हैं कह लेने दो, तुम लगे भरो। महाराज निर्द्वंद हो गए एकदम, ये भगवान की सह मिल गई। किंतु जिस दिन से कीर्तन कर दिया उस दिन से महाराज बिल्कुल एकदम उन्मत्त होकर चिंतन में लग गए कि प्रभु में इतना सामर्थ्य तो मैं क्यों ने उन्हीं का दर्शन करूं। आंखें तरसती है, तरसने ऐसा प्राय होता ही है। सूरदास थे तो जन्म के छिनार, करोड़पति का इकलौता लड़का, एक तो इकलौता लड़का, एक आंख बड़ी खतरनाक होती है, वो सुधर भी सकता बिगड़ भी सकता, कोई ठीक नहीं। दुलार जो होता अति दुलार बिगाड़ देता है। तो वो पत्रियों कोठों पे नाश देखें, एक बार पत्रिया को छुरा मार दिया, फांसी पे चले गए, उसकी स्त्री पतिव्रता थी, उसने छुरा भी लिया। बोले उस पत्रिया को, भला ये क्यों छुरा मारेंगे, मैंने मारा, हमारे पति को आजीवन बरगला रखा, मेरे सहन के बाहर था इसलिए मारा। सूरदास छूट गए, वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया, करोड़ों रुपए एक पत्रिया को दे दिया। आज उसने मुझे ठुकरा दिया, किस्सा लंबा, हम संक्षेप कह रहे हैं। और जिसको हमने सदैव जूतियों में रखा उस, अब मैं खाली हाथ कौन सा मुंह दिखाऊं, चलो प्रभु की शरण में। चल दिए वृंदावन, रास्ते में एक नगर सेठ, वो भी करोड़पति था, बहुत धर्मात्मा, कोई उस रास्ते से भूखा प्यासा नहीं जा सकता था। संत महात्माओं को कुटीर बनवा देना, कंबल लोटा दे देना, भोजन कराना, उसके 15-25 आदमी घुमा करते थे। कोई साधु महात्मा भूखा रूखा अभ्यागत जरूरतमंद कहीं कष्ट न पाए, तुम लोग लाओ बांटो खिलाओ। सूरदास को भी लोग ले गए और वो सुबह 10 बजे फांसी से छूटा रहा और 12-2 बजे पकड़ गया। सेठ के धर्मात्मा सेवक लोग ले गए। तब सेठ सेठानी जब भोजन लेके आए तो पतुरिया दिखाई पड़ने लगी उसको। बोले अरे हमने तो छुरा मार दिया था, तुम जिंदी हो या उसी की बहन हो, वो जन्म भर का कुकर्मी। तो बोले हम भोजन नहीं करेंगे। बोले भोजन नहीं करेंगे महाराज, इस दरवाजे से कोई संत बगैर जूठन गिराए आज तक गया ही नहीं, आप जैसे भी हो आप कृपा करें प्रसाद ले लें, कुटिया बनवा दें, जो हुक्म हो। तो बोले हम विश्राम करेंगे सेठान जी के कक्ष में रात्रि भर, तब भोजन करेंगे। तो सेठान और सेठ ने परामर्श किया, भगवान परीक्षा लेते हैं क्या, तो रक्षा करना भगवान का काम, हमारा नहीं। बोले चले महाराज आप प्रसाद तो पावें। जहां सेठान चांदी का थाल लेके पहुंची तो फांसी का फंदा लटकता दिखाई देने लगा सूरदास को। बोले अरे एक औरत की वजह से फांसी, एक औरत ने फांसी से छुड़ाया, फिर भी ये दुष्ट चित्त फिर उधरी भाग रहा है, ये सब दोषी आंखों का है। बोले माताजी जरा सुई डोरा लावे। तो सेठान ने सोचा लगता है भगवान हृदय में बैठे हैं इनके, माताजी कहता है, सुई डोरा दिया क्या होगा महात्मन। तो बोले प्रेम टूट गया, थोड़ी सिलाई कर लेने दो। जहां सुई लिया दोनों आंखें कोंच दिया, महात्मा ने आंख फोड़ लिया, महाराज ने आंखें फोड़ ली। तब सूरदास बोले आप चिंता न करें, इन आंखों ने भूल की है तो इनको दंड देना आवश्यक था, जो परमार्थ पथ से हमें भटकाए उस एक इंद्रिय के बिना जी लेना भी श्रेयस्कर है, यदि वो गड्ढे में गिराती हो तो। इसलिए आंखें ये इसी लायक थी, आपका कोई दोष नहीं, हमें वृंदावन का रास्ता बता दे। रास्ता पकड़ लिया वृंदावन का, पकड़ा दिया। जन्म का सूर होता तो जुगाड़ से सूरदास सब जगह चले जाते हैं, लेकिन आज का ताजा सूर जंगल में था, एक कुआ गिर गया भीतर, अब छाती भर पानी में डुब 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 डोले अंधा। 7 दिन बीत गए, अब केवल हे मुरारी, हे गोविंद, हे मुरारी, हे गोविंद, जय श्वास बची उतनी श्वास तो मैं प्रभु में लगा दूं। वहां न कोई संग दोष था, न कोई संकल्प विकल्प था, न वहां कोई गांव ग्राम था, आदमी का प्रश्न ही नहीं था। अब भगवान है भगवान, इतने में एक हाथ बच्चे का एक हाथ पहुंचा, बोले बाबा यहां क्या कर रहे हैं, ले हाथ पकड़ो, पकड़ा खींच के बाहर कर दिया। तब सूरदास ने कड़ाई से हाथ पकड़ा उस बच्चे का, बोले अरे भैया तुम कौन हो, जंगल में कहां से आए हो, बता तो दो। तो भगवान झटक के चल दिए। सूरदास समझ गया ये 25 हाथ लंबा तल में हम पड़े थे, वहां हाथ पहुंच गया और हाथे भर हाथ लगा और शरीर छुए का नहीं मिला, इतना लंबा हाथ बला। भगवान करुणा करके आए, हमें बाहर निकाला। तब सूर समझ गया कि कर छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगा तू ही। हाथ छुड़ा के भागे जा रहे हो, हृदय से जब जाओगे तो प्रभु तब तो मैं समझूंगा कि आप बलशाली हैं। प्रण कर लिया सूर ने, अब सूर के आंखों में केवल भगवान थे और कोई चिंतवन ही नहीं रहेगा। 7 दिन में तो अकल ठिकाने आ गई और कोई था ही नहीं चित्त में। तो जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती, सूर की आंखें फूटी थी लेकिन आंखें तरस रही थी। बिंद्रावन पहुंचे तो जन्म भर तो पत्रियों का साथ किया, तो कुछ न कुछ रागनी अलापत रहा, वो गला बड़ा बढ़िया रहा सूरदास का। तो बोले ये सूरा ठीक है, राश बिहारी जी के मंदिर में कुछ टिन टुन करता रहेगा तो अच्छा ही है, कुछ माहौल बनेगा। मंदिरों में, बड़े मंदिरों में कोई न कोई गवैया बैठा रहता है ना, बैठा दिया। सूरदास लगे भजन गाने, जो सिंगार करे वही गावे। वसंत में वसंती वस्त्र पहनाए जाए भगवान को, वर्षात में धानी वस्त्र पहनाए जाए, जो सिंगार करे वही गावे। लोगों को संदेह हुआ तो आंखें दोनों फूटी, ये सूरदास देखता है क्या। पुजारियों ने मीटिंग किया, आज भगवान को वस्त्र ही नहीं पहना, वो देखे सूर्य सूरदास क्या गाता है। वस्त्र पहनाया ही नहीं, तिलक सिलक लगा के छोड़ दिया। अब सूरदास बहुत खुश, लगे गाने में वो मूर्ति की ओर मुंह करके, बोले आज बने हरि नंगम नंगा, माखन फेंकत करते उछंगा। वही भेसी था बालकों वाला। तो बोले ओ सब घोड़े फिगरे भगवान, हमने सोचा भिकमंगा साधारण कोई सूरा है, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्दृष्टि वाले हैं। माखन मुंह में जरूर लपटाया था वो भी आपने गाया, नंगे हैं तो नंगा गाया, एक ही पांव में पैजनिया थी तो एक पांव के पैजनिया का आपने नाम लिया, आप महापुरुष हैं। बस अब सूर से कौन गवावे, संत हो गए। बाहर की आंखें तो फूट गई लेकिन भीतर की आंखें खुल गई। तो जिस दिन से गए हो तुम आंखें तरसती है। भगवान बिंद्रावन से चले गए मथुरा, गोपियों ने रथ के पहिए के नीचे लेट गई, सब बोले कि अब हम जिंदी रह के क्या करेंगे, आप प्रभु रोंदते हुए चले जाइए। भगवान ने कहा नहीं तुम चिंता मत करो, तुम हमारी आत्मा हो, तुम हमारे प्राण हो, मैं केवल 15 दिन में आता हूँ। गए और लौटे नहीं। गोपियां भूल गई माखन दूध दही अपनी प्रॉपर्टी, भूल गए पति और पुत्र, कृष्ण के विरह में करील के कुंजों में शांत में रात और दिन केवल हे कृष्ण कीर्तन कर रही थी राधिका के संरक्षण में। जिस दिन से भगवान वृंदावन छोड़ा उस दिन से वो विकल हो गई, विक्षिप्त हो गई एकदम, और केवल एक चिंता। एक बार देवऋषि नारद पहुंच गए तो बोले अरे देवऋषि आप तो भ्रमणशील है, कहीं हमारे कन्हैया को देखा। बोले हाँ देखा, मैं वहीं से आ रहा हूं, कैसे हैं हमारे कन्हैया। बोले जाने पर भेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बोले वो कैसे। बोले उनको हो गया मस्तिष्क ज्वर, वैद्य डॉक्टरों ने दे दिया है जवाब, तो भेंट हो भी सकती है, रोग इलाज के बाहर है। तो राधिका बोली, अरे फालतू बात नहीं नारी जी, हम लोगों लायक कोई सेवा हो तो कृपा करके बताएं। वो जानती थी कि भगवान कहीं मरते हैं क्या, तो बोले कोई सेवा, बोले चरण धूली मांगी है। लगी गोप वो क्या करेंगे, बोले अपने सिर पे मलेंगे, उस पुण्य से प्राण बच सकते हैं। लगी गोपियां रमन रेती में पांव पीटने, कहीं बगैर कण छुआ चरण, बगैर चरण छुआ कण ने चला जाए, नितिन महापुरुष को मट्टी ढोना पड़ेगा और हमें पाप लगेगा। आज्ञा पालन में कोई पाप नहीं, महापुरुष मरे चाहे जिए। अब चिनिहा बोरा भरा उठा दिया सिर पर, सब ने लिपट के उठाया, ढकेल के नारद के सिर पर रख दिया। नारद जी जब चलने लगे तो बोले, अरे वो सिर पे धारण करेंगे, उससे तुम लोगों का परलोक नष्ट हो सकता है, नरक भी भोगना पड़ सकता है। तो राधिका बोली, अरे नारद जी बातों में समय नष्ट न करें, जितना आप यहां बातों में समय नष्ट करोगे उतना ही हमारे प्रभु को कष्ट होगा, जल्दी जाओ, वो सुखी रहें, वो जिए वैसे ही खिलखिलाते रहे, बांसुरी की दोनी गुनगुनाती रहे, हम अनंत काल तक नरक में पड़ी रहे, हमारी चिंता छोड़ो, प्रभु प्रसन्न रहे, हमारा कन्हैया प्रसन्न रहे। बिना ढोने वाले बाबा जी और पड़ गया, भेंट हो गई चिनिहा बोरा से, कांखत कांखत गर्दन हो गई टेढ़ी, ले जाके पटका लियो अपन चरण रच। रुक्मणी ने एक मुकदमा कायम कर दिया था, रुक्मणी कहती थी मैं प्रभु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हूं, तो नारद जी ने आग लगा दिया, नहीं सभा सोसाइटी में इष्ट मित्रों में कभी आपका नाम हमने सुना नहीं, जब देखो तब गोपियों का नाम लेने में भगवान का हृदय भर आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्रेमाश्रु छलक आते, आप लोगों का पटरानियों का नाम हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान के हृदय में जो स्थान गोपियों का आपका 10% भी नहीं, वो नाराज हो गई। बोले अरे नारद जी, कोप भवन की ओर बढ़ गई, कहीं पायल फेंका, कहीं नवलखा हार फेंका, कहीं दुपट्टा फेंका, लट छिटकाया, बड़ी कोप भवन की ओर, भगवान का बात क्या है, कहीं यार अजीब दृश्य है, कहीं नारद जी से तो भेंट नहीं हो गई। बोले हाँ प्रभु, आज नारद जी ने बड़ा लंबा सत्संग किया है रुक्मणी जी से। बोले तब जल्दी करो, दो चार रजाई लाओ, ओढ़ के नखड़ा करके लेट गए। वैद्य डॉक्टर फैल, रुक्मणी भी आ गई, सब रानियां आ गई, नारद दौड़ के पहुंचे, प्रभु हुआ क्या? बोले अरे नारद, हूं मैं भाग्यवान, अंतिम समय है नारद, तुम्हारे ऐसे देव पुरुष हमारी आंखों के सामने और मेरा प्राण जा रहा है, मैं कृतार्थ हुआ नारद जी। बोले अरे प्रभु ऐसा न कहे, कुछ तो उपचार होगा। बोले सृष्टि में उपचार तो नहीं है, अपनी पवित्र चरण धूली मुझ में श्रद्धा रखने वाली रानी है अथवा कोई दे दे, वो मैं मस्तिष्क में धारण कर लूं, उस पुण्य से मेरे प्राण बच सकते हैं। नारद घूम गए रुक्मणी की तरफ, सत्यभामा जामवंती की तरफ, बोले जल्दी करो, काम बन गया, प्रभु रहेंगे हम लोगों के बीच में। सब पीछे हट गई, बोले ये असंभव, इनकी चरण धूली हमारे सिर पर, मैं क्षुद्र धूली भला कैसे दे दूं इनके सिर पे मलने के लिए, उससे हमारा परलोक भी नष्ट हो जाएगा, समाज क्या कहेगा कि अब सिर पर पांव झाड़ने लगी, मर्यादा के खिलाफ है। नारद ने कहा अरे मर्यादा ये अब ठंडे हो गए तो वेधव्य सहना पड़ेगा। रुक्मणी जी बड़ी खिन्न होकर रुक्मणी बोली, नारद जी भाग्य का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा अरे नारद, औरो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया जैसे प्राण अब गया कि तब गया, बचपन से तो ड्रामा किए रहे, कौन बड़ी बात थी। बोले अरे नारद, बिंद्रावन चले जाओ, शायद किसी को मुझ पर दया आ जाए। बिंद्रावन गए और वो बोरा लेके आए, लाके पटका, लियो अपन चरण रच। गर्दन टेढ़ी होगी, पसीने में तर गिर पड़े नारद, घर फोड़े रहे सजाऊ पागे। तुरंत भगवान उछल के खड़े हो गए, सारा गर्दा अपने ऊपर डाल दिया। बोले, अरे नारद जी, ये रुक्मणी इत्यादि पटरानियों का और गोपियों का कौन मुकाबला? अरे 19-20 में तो मुकाबला सुना, भलाई तो 19-20 भी नहीं है, इनको तो 2-3 जन्म और झेलना पड़ेगा। गोपियां मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, उनकी चरणरज मेरी चरणरज और मेरी चरणरज उनकी चरणरज, वो मुझ में तद्रूप है, अभिन्न है, स्थित है, भला गोपियों का इन रुक्मणी इत्यादि का कौन मुकाबला? उस दिन से रुक्मणी जी की गर्मी ठंडी हो गई। भक्त शिरोमणि होके घुमा करती थी पोजीशन बना के, कोई कोई महात्मा जान लेते हम बड़ हो गए तो कपड़ा उपड़ा सुधारे लागत। उस दिन से चाय पानी टाइम टेबल सेवा में प्रवृत्त हो गई। संदेशन मधुवन कूप भरे, इतना संदेशा गोपियों ने भेजा वो मधुवन के कुएं भर जाए, इतने संदेशे भेज दिए। जब से बिछड़ो श्याम नंद सांवरो नहीं को आवतन जात, कहे कोई परदेशी की बात, तो जिस दिन से गए हो तुम आंखें तरसती है। एक बार भगवान अपना करिश्मा दिखा के, अपना परिचय करा के, थोड़ा सा साधक को अपनी ईश्वरीय विभूति का भान करा दें, तो फिर केवल साधक उन्हें चाहेगा, सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं कि उसे भटका दे। तो जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है, और जब तक भगवान की तरफ से कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, कुछ चमत्कार नहीं मिलता, तब तक साधक अंधेरे में मारा हुआ तीर है भी कि नहीं भगवान। एक संदेहास्पद भक्ति, किंतु जहां प्रमाण मिल गया तो उसके बाद में केवल भगवान को चाहेगा वो। ओमा राम प्रभाव जिन जाना, तिन्हीं भजन तजी भावने आना। प्रभु जा आंखों से एक बार अपनी विभूति का परिचय करा के जब हट जाते हैं, तो साधक में त्रिलोक की संपत्ति भी रख दो तो ताकेगा नहीं, छुएगा नहीं। गोपियां प्रॉपर्टी भूल गई, लड़के भूल गए, पति भूल गए, सब कुछ भूल गई। कृष्ण के विरह भर था उनके हृदय में। एक दिन साधारण गोबर पाथने वाली ग्वाली ने कृष्ण के सर्वोपरि भक्तों की लिस्ट में आ गई। रुक्मणी जो राजरानियां वो राजकुमारियां थी, वो धूल चाटती रह गई। भगवान भाव वहां श्रद्धा की कीमत होती है, और जहां प्रभु का कुछ भी चमत्कार मिला तो फिर एकदम उदास, उदासीनो गत्यव्य था। आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है। आलम माने भीड़ भाड़, एकदम संसार के आरोह अवरोह से अलग उदास। संसार से तो उदास है लेकिन भीड़ रहती है, प्रभु के विरह की, वेदना की, अनुराग की, देवी वृत्ति का प्रवाह रहता है अंतःकरण में। अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, देवी संपद, आसुरी संपद। आसुरी संपद अधोगति और नीची योनियों में भरमाती है, देवी संपद परम श्रेय को दिलाती है, प्रभु का धाम दिलाती है। तो ये अधोमुखी प्रवृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती, ये भीड़ सब में रहती है, कभी ये सही की कभी वो सही। किंतु भगवान जब थोड़ा सा अपना परिचय दे देते हैं, उसके बाद में संसार से तो उदास, फिर केवल उनके प्रभु के विरह की वेदना, उसके अरमान उमड़ते रहते हैं, उसके संकल्प विकल्पों की लहर उठती रहती है, ये एक भीड़ भाड़ रहती है। आलम है उदासी का, उदास, किसी में कोई आसक्ति नहीं, लेकिन हृदय में एक प्रभु के विरह की वेदना रहती है। हसरत सी बरसती है, चित्त जब प्रकृति के द्वंद्वों से उपराम शांत प्रवाहित हुआ तो हां, हसरत माने कृपा होती है, हम जो इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति होने लगती है, भगवान की कृपा बरसने लगती है। किंतु ये उदासी भली प्रकार साधक के हृदय में संसार से एकदम उदासीनता कब आती है? जब भगवान कुछ अपना परिचय दे दे। तो जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है। जिस दिन से शूर का हाथ छुड़ा के गए, गोपियों को आश्वासन दे के गए, आंखें तरसती ही रहेगी। वो संसार भूल गई, संसार में उनके पकड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं, आंखें तरसती रहेगी। मैं कसके लबों से जब पीने की सदाई, मैं कस माने शराबी होता है, पियक्कड़। एक तो शराब होती दुनिया में जो पीते हैं, लेकिन भजन एक नशा है, ये एक खुमारी है। सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संसार के सारे नशे वो तो सवेरे फिर उतर गया, फिर ढूंढने लगते हैं विक्षिप्त की तरह, पागल की तरह, लेकिन नाम एक ऐसी खुमारी है, ऐसा नशा है, चढ़ी रहे दिन रात। न रात चैन जागत में सुमिरन करे, शोवत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जागत में सुमिरन, सोवे में लौ लगाओ, सुरत की डोरी लगी रहे, क्रम न टूट जाए। भजन एक नशा है, भजन एक खुमारी है, और ये नशा भी तब चढ़ता है जब भगवान का कुछ चमत्कार देखने को मिल जाए। फिर केवल वो उन्हें चाहेगा जो भजन करने वाला। तो मैं कश के लबों से जब पीने की सदा आई, पीने की आवाज आई, उसके ओटों से जब मैं अवश्य प्राप्त करूंगा, मैं केवल भजन ही करूंगा। जब ये ईश्वरीय नशा, भजन की खुमारी प्राप्त करने की जब आवाज आई, मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। तो मैं खाना भी खाली है, बोतल भी तरसती है। तो मैं खाना खाली और नशा तो मिल जाएगा बाजार में, शोरूमों में, शराब की दुकानों में, लेकिन भजन वाली, भजन की जागृति बगैर सदगुरु के कभी किसी को नहीं मिली, होता ही नहीं। पूज्य महाराज जी से लोग पूछें, बोले महाराज संसार के सारे दर्शन शास्त्र पलट दिया हम लोगों ने, जो दर्शन शास्त्र पर शोध करते हैं उनकी थीसिस भी पास हम ही करते हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद सारी अलग अलग छांट के रख दिया, किंतु साधन नहीं समझ में आता, भजन नहीं समझ में आता। तब महाराज कहा करें हो, सब बात सब कोई जानते हैं, दो दो पैसे में वेदांत और लिखते भी जा रहे हैं, किंतु साधन एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती, किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा जागृत हो जाया करता है। भजन लिखने में आता ही नहीं, न वाणी से जो हम कह रहे हैं इससे भी नहीं मिलेगा। जिसकी श्रद्धा से डोरी लग गई, अनुभवी महापुरुष सदगुरु, उनके अनुसार टूटी फूटी साधना पार लग गई, उन महापुरुष से जहां श्रद्धा की डोरी लगी, तो भजन जागृत हो जाएगा। उनके द्वारा किसी किसी अनुरागी के हृदय में ये भजन, ईश्वर प्राप्ति वाला साधना जागृत हो जाया करती है। ये कहने से नहीं आती, लिखने में नहीं आती। भगवान राम से लक्ष्मण ने एक प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु सुख का उपाय क्या है? भक्ति और पंचवटी में थे, ये 5-7 प्रश्न किया, प्रभु सुख का उपाय क्या है? पंचवटी की कुटिया तैयार थी, प्रभु हरि चर्चा चल रही थी, भारत के आपके पूर्वज, हर जोतने वाले भी पूर्वज, जब दोपहर में पेड़ के नीचे बैठे तो बैठ के हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, भजन विधि, केवल ये चर्चा ही होती थी भारत में। विदेशों में कौन पार्टी है, कौन साला कहाँ गया, किसको कैसे पलट दें, कौन खड़ियंत्र करें, यहाँ ही था ही नहीं, केवल भजन की चर्चा। भगवान लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु सुख का स्रोत क्या? भक्ति तात अनुपम सुख मूला। हे लक्ष्मण, अनुपम सुख की मूल तो भक्ति है। तो लक्ष्मण ने पुनः नमन किया, प्रभु मुझे प्रदान कर दें। बोले, सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। संत का मिलना पर्याप्त नहीं, जब वो अनुकूल हो तभी मिलेगी। किताबें तो तमाम थी, उपदेश भी तमाम थे, उपदेश तो भगवान भी कर रहे हैं, किंतु भक्ति जो हृदय से अंतःकरण से जो जागृति है, बगैर किसी तत्वदर्शी सदगुरु, ऐसा जहां प्राप्त होता है वो होता है सदगुरु का दरबार, गुरु का द्वार। वो है मैं खाना, वहीं से स्त्रीय नशा भजन की जागृति संभव है। मैं तो मैं कस के लबों से जब पीने की सदा आई, सदा माने आवाज आई कि अवश्य प्राप्त करूंगा, तो मैं खाना भी खाली है बोतल भी तरसती है। गुरु के दरबार में भी पहुंच गए, लेकिन ये नशा ऐसा थोड़ा ही को बाल्टी भर के उड़ेल दिया, सने सने सेवा करो, उनके अनुसार आज्ञा का पालन करो, सेवा सुमरन उनके निर्देशन के अनुसार साधना करो, तो सने सने आएगी। इसलिए पहुंचने पर भी मैं खाना हमारे लिए खाली, बोतल भी तरसती है, बाहर शराब बोतलों में भरी जाती है, किंतु ईश्वरीय नशा वृत्ति ही बोतल है। इष्ट अनुमुखी जो प्रवृत्ति है वो लगन है, तड़फन है, सब कुछ है, लेकिन टिकती तो नहीं भजन में, वो भी खाली है। तो मैं खाना भी खाली है बोतल भी तरसती है। वृत्ति में तड़फन है कि हम अवश्य प्राप्त करेंगे। कभी साधक उपवास करता है, कभी प्रार्थना करता है, तरस तो है, तड़फन तो है। तरस ना माने होता है झिंकना, तरस रही कि कब मिले कब पा जाए, लेकिन है खाली। वृत्ति में भजन टिकता ही नहीं, तब हम करें क्या, तब हमारी प्राप्ति कैसे हो। तो मैं खाने के अंदर ही रहने दे मुझे साकी, साकी माने पिलाने वाला। बाहर तो कोई भी तनख्वाह दे दो, कोई बैठ के पिलाने लगेगा, नहीं पिला देगा, किंतु ये भजन की जागृति, फिर उत्तरोत्तर भजन के साधक का संरक्षण प्रदान करते हुए उसे ले चलना लक्ष्य तक, ये सदगुरु की देन है। सदगुरु ही ये भजन ईश्वरीय नशा भक्ति की खुमारी प्रदान करने वाले सदगुरु हैं, वही साकी हैं, वही पिला सकते हैं और कोई नहीं। तो अब वो प्रार्थना करता है सदगुरु से कि इस मैं खाने के अंदर, गुरु दरबार की परिधि के अंदर रहने दे मुझे साकी। क्यों? कि मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है, और सदगुरु के दरबार उनके वातावरण के बाहर जहां झांका एक आग बरसती है। क्या है लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा लिप्सा की एक लपटें उठती रहती है, ज्वालाएं भड़कती रहती है। मन करी विषय अनल बन जर ही, हो ही सुखी जो ए ही सर पर ही। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में रात दिन झुलुसता रहता है, सुखी हो जाए यदि इस भक्ति रूपी जल में अवगाहन कर ले। मैं खाने के अंदर ही रहने दे मुझे साकी। सदगुरु से निवेदन करता, हमें कम से कम पड़ा रहने दो दरवाजे पर। मैं खाने के बाहर तो एक आग बरसती है, एक काम पूरा हुआ दूसरा तैयार, तीसरा तैयार, चौथा तैयार, बुढ़ोती आ गई जबरदस्ती। नहीं है ऐसा, एक त्रेतापों की ज्वाला की लपटें उठती रहती है, कोई न कोई ताप पीछा करता रहता है। देहिक देविक भौतिक तापा, ये तीन ताप, या देहिक होगा, देविक होगा, या भूत प्राणी मात प्राणी समुदाय एक दूसरे के टकराव से होगा। बाहर तो एक आग बरसती है। गुरु दरबार में पड़े पड़े टूटी फूटी साधना सेवा करते करते एक इस तरह ऐसा भी आया, मैं शहरे खामोशी से गुजरा तो सदा आई। शहर और खामोश, शहर में तो कोलाहल होता है, शहर माने नगर होता है, अंतःकरण में भीड़ लगी है। कभी कभी एक माता जी आती बॉम्बे से, कहती महाराज जब भजन करने बैठते हैं तो मन बतियावत बहुत है, पहले नहीं बोलता, भजन में बैठो रोटी सेको तो नहीं बोलेगा, और जहां भजन में बैठो तो मन बतियावत बहुत है। एक और माता जी आई, बोले महाराज आप प्राणवा भड़भड़ावा करते, एक भीड़ लगी है, अंतःकरण में अनंत संस्कारों की रील छिपी हुई है। जब जिसका नंबर आता है पिंड रूप में फेंकता रहता है, जिस संस्कार का नंबर आता है वो संकल्प के रूप में उभड़ कर बाहर आ जाता है, अकल्पित आवाजें आने लगती है, चिंतवन जो हमने नहीं सुना वो भी। तो यहाँ भीड़ लगी हुई अंतःकरण में, लेकिन सद्गुरु के दरबार में मैं खाने के अंदर ही रहते बन गया तो वृत्ति शांत प्रवाहित हो चली। तो ये नगर भीड़ भाड़ से भरा, भले बुरे चिंतनों का उद्वेग चल रहा था, एक लहर चल गई, बवंडर चल रहा था, वो शांत हो गया। जहां वृत्ति शांत प्रवाहित हुई, आज वो शहर पहले भीड़ थी कोलाहल था, अब शांत प्रवाहित हो गई वृत्ति। तो जब मैं शहरे खामोशी से अर्थात शांत वृत्ति की अवस्था से गुजरा तो उस स्तर पर आवाज आई, भगवान की तरफ से सावधान करते हुए आवाज आई, सदा आई कि आहिस्ता चलो लोगों, दीवानों की बस्ती है, आहिस्ते चलो, संभल के चलो। इसका मतलब वृत्ति शांत प्रवाहित है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ पा गए हैं, इसका मतलब केवल इतना है कि अब साधना पकड़ में आ गई है, ध्यान ध्यान लगने लगा, बात इतनी है। ध्यान हमारा उद्देश्य नहीं है, ध्यान की परिपक्व अवस्था काल में जो लक्ष्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य वो है, जब वो जब तक न मिले तब तक आहिस्ता चलो लोगों, सचेता अवस्था में चलो लोगों, जागरूक होके चलो। क्यों? ये दीवानों की बस्ती है, चित शांत प्रवाहित है, तो इसका मतलब एक लक्ष्य के चिंतन में है, विरही अनुरागी दीवाना मतवाला एक ही इकाई है। ये जब चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित हो तब फिर साधु को और भी सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि ये दीवानों की बस्ती, एक प्रभु के पीछे लौ लगाने वाले विरहियों की बस्ती है। ये विरही का ही चित्त शांत प्रवाहित होता है, एक प्रभु को लेके उसी में डूबता हुआ चलता है। हे गुरुजी ने कहा बेटा पेड़ पे चढ़ जा, शिष्य को चढ़ गया चोटी पर, बोले और चढ़ जा, तो और चढ़ गया, बोले और चढ़ जा, तो एकदम नोक पर पहुंच गया आज्ञाकारी और अपने ध्यान में बैठ गए। वो कांपता हुआ चक्कर आ रहा था, इतना ऊंचा पेड़ था, कांपता हुआ घुसकत घुसकत पकड़त पकड़त बड़ी कड़ाई से पकड़ते हुए सावधानी से आया नीचे, एक 10 फीट रह गया। तो गुरुजी बड़ी जोर से चौके, भजन बंद करके बोले सावधान, खूंटी पकड़ ले, पांव चिपका, और सट के चल, और सावधान। आस्ते आस्ते नीचे उतर गया, तब आके प्रणाम किया गुरु महाराज, वहां जब मैं गिरने लायक था तब तो आंख मूंद के बैठे रहो अब जब खाली 10 फीट रह गया तो सावधान, खबरदार, कोटी पकड़, पांव जमा, क्या बात थी। बोले बेटा वहां तू खुद सावधान था, यहां तू लापरवाह था, यहां पर वहां तू खुद सावधान था, यहां लापरवाह था, कि अब क्या रह गया, बस इतना सा। ऐसी ही अवस्था में माया कामयाब होती है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करहीं तब माया। माया देखती कि बेटा हमारे चंगुल से निकला जा रहा है, बंधन छूटने वाला है, माया की ग्रंथि कटने वाली इस जीव की, ता विघ्न अनेक करहीं तब माया। एक नहीं अनेक विघ्न उपस्थित करती है। कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। वो कल करेगी माया, छल करेगी, बल करेगी, हर हालत में करीब पहुंचेगी नष्ट करने के लिए। फिर भी बेटा नहीं फंसा चंगुल में, तो एक सुख समदाव और चलेगी कि रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। वो रिद्धियां प्रदान कर देगी, यहां तक कि सिद्ध बना देगी। सिद्ध माया कभी नहीं बनाती। बंधन छूटने का जब समय आता है, सिद्ध भगवान कभी नहीं बनाते। बंधन छूटने का समय आता है तो माया ही थोड़ा चारा फेंक देती। ऐसी स्थिति वाला साधक बाजू से गुजर भर जाए तो सांस बंद हो गई हो तो लौट आएगी, भले लौट आवे, उसका स्वरूप वही है, उसका स्तर वही है। किंतु जहां बाबा जी ने सोचा हमारे पराक्रम से हो गया, माया कामयाब हो गई, कुछ दिन खूब होगा ये टुटका, बहुतों की सांस लौट जाएगी, उसके बाद में कहीं कुछ नहीं। छूटी ने ग्रंथि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। और जो थोड़ा बहुत चमत्कार मिला था वो भी खत्म, और बंधन भी नहीं छूटा। इसलिए पातंजल बड़े अच्छे महापुरुष हुए योगेश्वर, उन्होंने सुझाव दिया साधकों को, व्युत्थाने सिद्धियां। प्रगट होती वास्तव में सिद्धि है, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है जितना काम क्रोध लोभ इत्यादि। एक संत थे, 10 साल की अवस्था में साधु हो गए, और लेकिन बड़ा लगनी लड़का था, लोगों ने सोचा पागल। आधी उम्र बीत गई तो लोगों ने सोचा नहीं नहीं ये है फकीर संत। और जब 75 साल उम्र हो गई तब परीक्षा की घड़ी आई। एक सहजादी नवाब जादी कन्या, वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही वेशभूषा, घोर जंगल में उनकी कुटीर के पास से गुजरी, खड़ी हो गई। ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। महाराज को दया आ गई, इसके साथ कोई है कि भटक के आ गई, कहीं पानी नहीं इस जंगल में, कहीं भटक न जाए, इसलिए न हो तो मैं इसको रास्ता बता दूं, ये जंगली कन्या तो है नहीं। बोले तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कोई है? तो मुस्कुराई पीछे हट गई। बोले कहां जाना, पूरे जंगल में भालू चीता शेर नरभक्षी भी हैं यहां पर, और कहीं पानी भी नहीं, तुम भटक जाओ, मैं रास्ता बता दूं। तो और मुस्कुराई पीछे हट गई। महात्मा खड़े हो गए, वो चली लाड प्यार में पली है, मन बढ़ है इसलिए दौड़ रही है, इसको कहा जरूर इसको कोई शेर भालू खा लेगा, इसको मैं रास्ता बता दूं। दौड़े 1.5 किलोमीटर, वो फर नई लड़कियां उड़े चली जाए। अब 75 साल के बाबा कहां तक दौड़े, खड़े हो गए। बोले अब ससुरी मरे चाहे जिए, अब तो ये नहीं बताएगी। जहां खड़े हुए हताश होके कि बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, पूरी जिंदगी बड़े वेग से जन्नत की ओर भागा जा रहा था, वही व्यक्ति आज उतने ही वेग से दोजक की ओर भागा जा रहा है। आज से 4th दिन तुम्हें नबूवत प्राप्त होने वाली थी। अरब के संत थे, उसी भाषा में बोल आवाज आई, आज से 4th दिन तुम्हें अवतार की स्थिति प्राप्त होने वाली थी। जो आज जीवन परम धाम की ओर बड़े वेग से चला जा रहा था, वही व्यक्ति उतने ही वेग से आज नरक की ओर भागा जा रहा है। केवल 4 दिन बाकी थे तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त होने में। बाबा जी को इतना गुस्सा आया, कुल्हाड़ी उठाया, पांव काट दिया। इन गरीब पांव का कोई दोष नहीं, दोष तो था मन का, वृत्ति का, वो दिखाई नहीं पड़ा, नहीं तो उसको भी काट देते। इसलिए हम आज की जानते हैं, आज क्या परिस्थिति, भगवान 10 दिन बाद क्या गुजरेगा उसको जानते हैं। तो दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इसलिए जब थोड़ी दूरी रह, 4 ही दिन बाकी थे, तो भगवान ने एक परीक्षा सूत्र फेंक दिया। परीक्षा में हल्के से कच्चे रह गए, उनकी भूल भी कुछ नहीं थी। किसी मरते हुए को सहारा देना तो कोई भूल नहीं है, लेकिन आकाशवाणी हुई, तुम भजन छोड़ के भागने लगे, इसलिए जब थोड़ी दूरी रह जाती है तो आहिस्ते चलो लोगों, आहिस्ता माने सूझबूझ से, सचेता अवस्था में जागरूक होकर लगो, चिंतन में और डूब के चलो। क्यों? ये अब जो तुम्हारी अवस्था है दीवानों की बस्ती है, ये विरही लोगों का स्तर है। इस अवस्था के पश्चात तुरंत लोगों को कभी स्वप्न में दिखाई पड़ेंगे महाराज, कभी कुछ अप्रत्याशित भीड़ घटने लगती है। इस पर कहते हैं, तो दुनिया की हर निगाहें जहरीली है नागिन से, मैं दूध पिलाता हूं फिर भी मुझे डसती है। दुनिया की हर निगाह इतनी जहरीली जैसे नागिन, मैं दूध पिलाता हूं फिर भी मुझे डसती है। महाराज के पास पहुंचे तो बोले, महाराज मैं तो मर रहा हूं, अब प्राण संकट में, अब न बचे, 3 महीने से बुखार आ रहा है, मलेरिया बुखार उस जंगलों में बहुत। महाराज बोले, सार पापी ई करे और भोगे बाबा जी बैठ गए, कर प्रणाम पटक मुड़ी खो विभूति, जब विभूति खाए तो छड़ी उठा गए, एक छड़ी मार गए, भाग पापी कहीं का। 2-4 खरी खोटी सुना दिया तो बेचारा सुकुड़ के बैठ जाए। तब फिर बोले, हाँ अब बता, बुखार कोने दिन है पारी तोरे? बोले महाराज कल। बोले पारी बीता क्या, देख क्या हाल है, क्या होता है। दूसरे दिन बुखार नहीं आवे उसको, तुरंत दूध दही लेके भाग के आवे, बोले महाराज बुखार तो नहीं आया। बोले जाओ बेटा, गया बुखार। हजारों केस इस प्रकार के हमारे आंखों के सामने, हम ही पंखा चलावा करें और लोग आयाई करें, बुखार कोई बुखार, टीबी, पता नहीं कौन कौन रोग, छड़ी छू भर दें रोग खत्म। एक दिन महाराज को बुखार चढ़ गया। महाराज कहें, जब अब पाप नहीं है और चढ़ता ही रह गया 1.5 साल तक, लोग दवाई लावे तो भगवान कहें छूना मत दवाई। बड़े बड़े बैड डॉक्टर पहुंचे, दवाई रख जाएं, जब 6 महीने बाद डॉक्टर लोग लौट के आवे तो उनकी दवाई वहीं रखी मिले, जाओ रख के जाए ऊपर गर्दा पड़ा रहे। बोले अरे महाराज, आपकी तबीयत तो और भी गड़बड़ हो गई, आपने दवाई लिया नहीं, मलेरिया है, तिल्ली है, लीवर कमजोर है, फिर बदल के रख दे। महाराज जहां दवाई की और ताकत, भगवान बोले छूना मत। तो एक दिन इतना बुखार चढ़ा कि प्यास के मारे दम निकला जाए, तो सरकत सरकत घुसकत घुसकत पहुंचे नदिया किनारे, ये पानी पिए 4 चुलवा, एक खप्पर भर के ले आवे, और कोई पात्र भी नहीं था, बैठे आसन पे, इतने में प्यास फिर तड़क जाए तो वो भी पी ले, फिर प्यास, 4 पलोटन आए और गए, इतने में तो बिल्कुल पस्त हो गए। तब भगवान महाराज बिगड़े, बोले अब जब पाप खत्म हो गया, जब हमारी निवृत्ति हो गई, पाप है ये नहीं तो मैं भोगत कहे हूं, ये बुखार मरणांतक वेदना क्यों? उस दिन भगवान ने बताया, जो छू छू के लोगों का उतार देते वो के भोगी। तब महाराज कहे, अरे हमने तो कोई समा सुधी नहीं, हमने तो कई 1000 को छू दिया, कब तक भोगे का पड़ी। तब उस दिन एक अनुभव में डुमार आया, एक आंख का काना, दुर्गंध शरीर में, बोले मालिक 3 आना पैसा हमें मिल जा। तो महाराज बोले, करे का मतलब 3 आना का? तो बोले 3 महीना और बुखार। महाराज कहें, दे तेरी पाप की, ससुरा 1 आने में 1 महीना भोगावत है, जोड़ो हो कौन महीना है। तो बोले महाराज, सावन लगा, सावन भादो कुवार, कुवार में मोर बुखार उतर जाए, भोग लो परमहंस जी 3 महीना और है, जब उतारे हो तो भोगी के। तो दुनिया की हर निगाहें जहरीली नागिन सी, नागिन काटती तो एक शरीर मर गया, लेकिन दुनिया की निगाहों के झांसे में आ गया तो कई जन्म लेना पड़ेगा। बड़ी विषैली नागिन की तरह निगाहें हैं, कोई कहता बिटिया का विवाह, बिटवा का विवाह, प्रमोशन नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, मुकदमा नहीं लगा, और ये कहा दुनिया में रोग असाध्य है, महाराज इन्हीं के माथे दुखे। मैं दूध पिलाता हूं विधि पर पंच गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरी बारी विकार। विधाता का प्रपंच, विधाता की सृष्टि गुण और दोषों से मिलके इस गिलावे से बना है, इस मसाले से। वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और प्रकृति का विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। शेर को घास खिलाओ मर जाएगा नहीं जिएगा, मछली को पानी के बाहर रखो मर जाएगी नहीं जिएगी। तो वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। हंस को भी दूध के बाहर रखो तो मर जाएगा, कौवा कोयल जो भी हो जाए हंस तो नहीं रह जाएगा। वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। यही जिसका जीवन स्तर है ये महापुरुष, और जिनकी वृत्ति शांत प्रवाहित है, सहरे खामोशी से गुजरा तो भगवान ने सावधान किया, आहिस्ता चलो, संभल के चलो, यही है दीवानों वाला स्तर। ऐसी परिस्थिति में दुनिया की निगाहें जहरीली नागिन सी, बेशक उनकी निगाहें ये है किंतु संत तो दूध पिलाएगा, कल्याण का रास्ता प्रशस्त करेगा, ईश्वरीय गुणों का सूत्रपात कर देगा। लाख सूत्रपात करे फिर भी मुझे डसती है, फिर भी समस्याएं तो अपनी जगह है ही है, उसका क्या करोगे। तो इसलिए समस्या तो सामने आएगी ही, हसरत सी बरसती है, कब कृपा सी बरसती है, जो चाहते हो चाह बरसने लगती है, कब कि एक बार प्रभु जब अपनी अनुभूति दे दें, साधक के हृदय में अपनी जानकारी का परिचय दे दें, फिर उसको सिवाय इसके उमा राम प्रभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावने आना। तो जिस दिन से गए हो तुम ये आंखें तरसती है, जन्म का चंडाल सूरदास जरा सा हाथ का स्पर्श कर दिया तो सूर सूर हो गए, महापुरुष हो गए, सर्वोपरि महापुरुष। ला बारिश आवारा था वो, तुलसी सर्प पकड़ के ससुराल गए, पीछे से चढ़ गए ऊपर, नदी में आ गई जमुना में बाढ़, तो लगे डूबने मरने, इतने में लाश मिल गई, लाश पकड़ के हो गए पार, फिर सर पकड़ के चढ़ के ऊपर, और उसे मालूम था ससुराल में किसका निवास कहाँ है। उस देवी के पास पहुंचे तो बोले आप, दरवाजा किसने खोला, रात को 12 बज रहा है। बोले प्रिय तुमने वो रस्सी लटका रखी थी, जब दिए से देखा रस्सी तो रहा काला नाग। बोले नदी कैसे पार कियो। बोले तुम्हारे पुण्य से एक लकड़ी मिल गई थी लेकिन दुर्गंध बहुत थी। बोले ओ, दो बार मरने से बचे हो, क्षुद्र हाड़ मांस का चमड़ा जो आज है कल नहीं रहेगा, मिट्टी में फूंका जाएगा, इस चमड़े में इतना मोह इतना लगाव, आधा भी भगवान में होता तो बेड़ा पार हो जाता है। पहले तो तुलसी को समझ में नहीं आया, दोबारे झिड़का तब कुछ और साया, तिबारे जब कहा तो बोले अरे चुप चुप मत कहना कि तुलसी आया था, कूदे और भाग गए, तब से लौट के घर कभी नहीं गए। जा रहे थे काम की ओर, निकल गए राम की ओर। इसका मतलब जानते हो, शरीर में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न भगवान है, वृत्ति में सब कुछ है। इसलिए इस वृत्ति की प्राप्ति के लिए संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जात, बांस फांस अरु मिश्री एके भाव विकात। इसलिए उत्तम संगत करो, और वो सर्वोपरि संगत सत्पुरुषों की है, वो पार लगी रही है। मति गिरति गति भूति भलाई, जब जई जतन जहां जई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद ज्ञान उपाऊ। न लोक में कोई उपाय है, न वेद में, किताब रटने से कुछ नहीं मिलेगा, किताबों का शिरमोर वेद, वेद में भी कोई उपाय नहीं, जब कभी पाया है तो संत संग में पाया है। संगत करो, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके जो उन्हें पुकारता हो उस नाम का जाप कर, चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे, बस तब सोने में सुहागा है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।